सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे असम, केरलम और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव में हुए रिकॉर्ड मतदान पर। इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार
प्रफुल्ल जी। सबसे पहले तो बात ये कि वर्ष 2026 के जो विधानसभा चुनाव हुए असम, केरल और पुद्दुचेरी में, तो यहां मतदान के प्रतिशत के मामले में एक तरह से देखें तो हमें एक नया इतिहास देखने को मिल रहा है। अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो असम में जहां 85% से अधिक मतदान हुआ, जो कि 2016 और उसके बाद के वर्षों में भी अधिक है, पुद्दुचेरी में 89.83 या फिर कहें कि 90% के आसपास मतदान दर्ज हुआ, वहीं केरल में 78% से अधिक मतदान देखने को मिला है, तो इनके पीछे आप किन कारकों को मानते हैं?
सामान्यतः वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो इसके अनेक कारक होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक जो माना जाता है
जी
वो कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है। यदि आपकी चुनावी प्रक्रिया बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और दोनों तरफ से वोटर मोबिलाइजेशन ये बड़ी मात्रा में जब होता है, सामान्यतः वोटिंग परसेंटेज ये ज्यादा दिखता है। कुछ राज्यों में ये पैटर्न भी होता है कि सामान्यतः वोटिंग ज्यादा होती है
जी,
जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य है, इवन पुदुचेरी भी, हृदय छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने के कारण वहां पे ये वोटिंग परसेंटेज ज्यादा दिखने के हमेशा एक पैटर्न दिखता है
जी।
लेकिन इसके साथ साथ कौन से इश्यूज पर लोग वोट कर रहे हैं, उसमें कितना एंथुजियाज्म है, कितने स्टेक्स उनको इस चुनाव में अपने लग रहे हैं, ये सारे ही इश्यूज महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इस सारे में इस बार और एक बिंदु जुड़ गया था, वो SIR का या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स का था
जी,
जिसके कारण हमको ये ज्यादा दिख रहा है। अभी तक क्या था कि 2002-03 के बाद वोटर्स लिस्ट की अपडेट इस तरीके से नहीं हुई थी, नए वोटर्स तो जुड़ रहे थे
जी।
2009-10 के बाद उनका क्लिंजिंग भी नहीं हुआ था। पहले ये होता था अपने आप ही, खास करके मृत्यु के बाद उसमें से नाम कट जाते थे। अब क्योंकि कटे हुए नाम या जिनके जो मूल स्थान है उसमें बदलाव हुआ है, इसलिए वो माइग्रेट होकर किसी कारण से, चाहे वो जॉब के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, तो दूसरे स्थान पर गए हैं, तो ऐसे भी लोगों के नाम अभी उसमें से कट गए हैं
जी।
तो इस कारण से भी टोटल नंबर कम होने के कारण वोटर्स का आउट ऑफ प्रपोर्शन जब हम किसी के भी इसमें देखते हैं, तो पहले इसमें ऐसा होता था कि 5%, 10% ऐसे लोग जो है वो इसमें वोट डाल ही नहीं सकते, या उसमें से कुछ लोगों का नामों का दुरुपयोग भी हुआ है ऐसा जैसे कि आरोप प्रत्यारोपों में दिखता है, फिर भी एक बड़ा परसेंटेज है जो उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये वोटिंग परसेंटेज बड़ा दिख रहा है। लेकिन मैं केवल SIR को इसमें नहीं मानता हूं, इसमें ये भी बिंदु है कि इस बार का चुनावी एंथुजियाज्म भी ज्यादा था, चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास भी इसके कारण दिखता है, और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी इसमें जो एक
जी। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, SIR का भी आपने जिक्र किया है, तो SIR तो मतलब एक ऐसी प्रक्रिया रही है जिसमें खासतौर पे डुप्लीकेसी खत्म करने की बात हो, फर्जी नाम हटाने की बात हो, तो ऐसे में निष्पक्षता बढ़ी है, तो वोटिंग परसेंटेज तो इससे बढ़ा ही होगा।
निश्चित निश्चित। अभी केरल का उदाहरण लेते हैं। केरल में पिछले चुनाव में 2,79,00,000 वोटर्स थे, अभी वो 2,70,00,000 के आसपास आए हैं, लेकिन ऑल ओवर हम देखें तो 24,62,000, यानी कुछ नए जुड़े भी हैं और कुछ पुराने कटे भी हैं। नया वोटर होता है उसमें स्वाभाविक रूप से, मतलब हम अभी इस आंकड़े के अनुसार ये कह सकते हैं कि लगभग 29,00,000 तो कटे हैं, लेकिन 20,00,000 उसके साथ साथ जुड़े भी हैं, और उसके कारण लगभग 25,00,000 वोटर्स का डिलीशन होने के बाद भी
जी,
और जो टोटल वोटर्स के 8% के आसपास था, फिर भी हमको ये दिखता है कि ये वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स का क्लिंजिंग होने के कारण ये ज्यादा क्रेडिबल इलेक्टोरल रोल है, इसमें नए मतदाता जुड़े भी हैं, जो अस्तित्व में नहीं है या फर्जी है वो कटे भी है, और इस कारण से चुनाव की विश्वासार्हता भी बढ़ी है। और चुनाव की विश्वासार्हता जब बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से मतलब पुदुचेरी जैसे स्टेट में भी लगभग 1,19,000 वोटर्स जो है वो SIR के कारण कम हुए हैं, चाहे मृत्यु के कारण चाहे बदलाव के कारण जैसे हमने चर्चा की, लेकिन नए वोटर्स उसके साथ जुड़े भी होंगे SIR में। तो ऐसे में कुल वोटर्स की संख्या 9,44,000 थी और वो वोट परसेंटेज भी हमको बहुत ज्यादा दिख रहा है।
जी प्रफुल्ल जी,
असम में वैसे SIR
जी, मैं असम पे ही आने वाला था जी, आपने जिक्र कर दिया, बताएं जी।
असम में वैसे क्योंकि असम में पहले ही NRC हो चुका था, असम में 2006 का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्णय दिया था, और उसके कारण हम देखते हैं कि पहले ही वहां पे मतदाता सूची, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत स्पष्ट था उस मामले में और बाहरी वोटर्स उसमें नहीं चाहिए, असम की मूल जो आदिवासी है उनको ही वोट का अधिकार होना चाहिए, या तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से माइग्रेट असम में हुए हो तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं भारत में और जगह पे रजिस्टर होना चाहिए
जी।
तो ये सारे प्रावधान वहां पे पहले ही लागू होने के कारण वहां की मतदाता सूची का क्लिनजिंग पहले हुआ था उसका स्पष्ट रूप से, और ट्रेडिशनली भी असम ये हाई वोटिंग परसेंटेज वाला रहा है। वैसे ही हम पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्यों में देखते हैं कि हाई वोटिंग परसेंटेज वाले स्टेट रहे।
असम में अगर मतदाताओं की हम बात करते हैं तो लगभग 2.5 करोड़ मतदाता है वहां पर, और महिलाओं और पुरुषों का आंकड़ा लगभग लगभग सेम है। और अब जब NRC की आपने बात की है तो इसके बाद भी क्या ये कह सकते हैं कि असम में इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज रहा उसमें महिलाओं और युवाओं की भूमिका काफी अहम रही है?
निश्चित, इस बार के सारे ही इलेक्शंस में हम दे सकते हैं, हम 2015 के बिहार के चुनाव से ये पैटर्न देख सकते हैं
जी।
2015 के बिहार के चुनाव में ये पहली बार हुआ था, 2020 में भी वो स्पष्टता से देखा कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद में लगभग 1990 के दशक से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किसी न किसी रूप में ग्राउंड पर कवर करता रहा हूं, चाहे वो रिपोर्टिंग के लिए हो चाहे वो डेटा कलेक्शन के लिए हो किसी भी रूप में। उसमें एक बात जो मुझे स्पष्ट रूप से 2014 के बाद जो ध्यान में आई है कि महिला वोटर्स का पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये बढ़ा है, पॉलिटिकल सहभागिता भी बढ़ी है, और उसके कारण अनेक राज्य और अनेक कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी बन गई है जहां पे महिला वोटर्स जो है वो पुरुष वोटर्स से अधिक संख्या में वोट करती है। माइग्रेशन पुरुष वोटर्स का अधिक होने के कारण बिहार के कुछ हिस्से में या उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में वहां पे ये ट्रेंड और भी स्वाभाविक रूप से दिखता है। लेकिन असम के संदर्भ में एक बात हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और उनका जो कनेक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था वैसे ही वहां पे भी हिमंत बिस्व शर्मा का है, मामा बोला जाता है प्रेम से, तो वो एक कनेक्ट करने वाला रिश्ता अनेक योजनाओं के कारण उनके साथ संवाद के कारण उन्होंने बनाया है। और अब जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है और उसमें महिलाओं की सहभागिता अभी तक जो केवल स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में, पंचायतों में, जिला परिषदों में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक सीमित थी
जी,
वो अब विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने जा रही है 33% तक। ऐसे में मुझे लगता है ये महिलाओं का इंथुजियाज्म और भी बढ़ेगा। असम जैसे स्टेट्स में ये और भी स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि जब स्टेक्स बढ़ जाते हैं महिला सुरक्षितता से जुड़े हुए, महिलाओं के जुड़ी हुई अलग अलग स्कीम्स हो, चाहे वो हाउसिंग से रिलेटेड हो, चाहे उनको मिलने वाला भत्ता हो, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा से जुड़े हुए उनके विषय जब चुनाव में उठाए जाते हैं किसी भी राजनीतिक दल
जी। प्रफुल्ल जी, यहाँ पर मैं आपको मैं रोकना चाहूंगा, असल में मेरे जहन में एक बात ही आ रही थी कि अभी जो असम के मतदान की हम बात कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर इसको मतलब ये माना गया है कि काफी मजबूती के साथ ये चुनाव हुआ, समावेशी हुआ, भरोसेमंद भी चुनाव रहा, और पिछले इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह की घटनाएं जो हुआ करती थी वो अब नहीं है, यानी कि वोटर्स के अंदर जोश इस बात का बढ़ा है कि अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो सुरक्षित देने जाएंगे और वापस भी सुरक्षित आएंगे। इसको आप कितना महत्व देते हैं, आपको क्या लगता है इस पर?
ये अनेक राज्यों में हुआ है, बंगाल तो इसके लिए अभी लिटमस टेस्ट होगा, लेकिन असम जैसे स्टेट में खास करके जहां पे कभी उग्रवादियों का कहीं पे, चाहे वो बोडो क्षेत्र में हो चाहे वो उल्फा का पहले ये रहा हो, एक बहुत लंबा हिंसा का दौर देखा है, लेकिन पिछले 10-12 सालों से हम देख सकते हैं एक शांति स्थापित हुई है। अनेक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ कुछ न कुछ निगोसिएशंस हुए हैं, पीस ट्रीटीज हुई है, उनकी सहभागिता भी सीधे चुनावी प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ी है। तो कुल मिलाकर ये पिक्चर ये दिखाता है, मतलब 2016 का असम का जो आंकड़ा था वो अभी तक का पीक था, वो 84% के आसपास का था, अभी 85.38% का टर्नआउट इस बार हमें प्रोविजनल डेटा में ही मिला है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्वासार्हता जो है, क्रेडिबिलिटी है, इस चुनाव में बहुत बड़ी देखने को मिली है। भारत जैसे देश में जहां पे इतनी बड़ी संख्या में, मतलब हम कल के ही 3 चुनाव का यदि आंकड़ा ले तो असम, केरल और पुदुचेरी मिलकर 5,31,00,000 मतदाता वोटर्स थे इसमें, और उसमें यदि हमको ये आंकड़ा मिलता है जो ऑन एन एवरेज जो है वो 80% के आसपास है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी देश के लिए है। क्योंकि हम जो तथाकथित विकसित देश है वहां पे जब हम देखते हैं तो मुश्किल से 40-50-60% तक मुश्किल से वोटिंग होता है, और उस पर ही सारा खेल कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा इसका तय होता है। तो चाहे वो पीएम से जुड़े हुए हो, मतदाता सूची का क्लींजिंग हो, बहुत जगह पे अभी सोसाइटीज में पोलिंग बूथ बने हैं जो नई पॉलिसी इलेक्शन कमीशन ने लाई है, फिर डिसेबिलिटी जिनका है, दिव्यांग है, उनके लिए फ्रेंडली बूथ्स की रचना बहुत जगह पे, जिनकी आयु ज्यादा है उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, वॉलंटियर्स के द्वारा वोटर्स का असिस्टेंस, ये सारे जो प्रावधान चुनाव आयोग ने किए हैं उसके कारण भी मैं मानता हूं कि एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये दोनों बड़ी है, और ये जो जिसको कह सकते हैं कि वोटर सेंट्रिक इनिशिएटिव चुनाव आयोग के है उसका भी परिणाम हमको सीधे सीधे इस चुनावी प्रक्रिया में।
अभी जिस तरह से आपने आंकड़ों का जिक्र किया, मतदाताओं का जिक्र किया, लगभग 296 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और 5.5 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया है और लगभग 1900 उम्मीदवार मैदान में थे कुल मिलाकर और लाखों मतदान कर्मी तैनात किए गए। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे जिन्होंने इस चुनावी प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता के साथ में देखा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि एसआईआर ने इस चीज को और ज्यादा बेहतर किया है ओवरऑल अगर देखते हैं?
निश्चित, भारत का चुनाव आयोग वैसे भी बहुत सारे देशों में, खास करके जहां पे नए सिरे से चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची बनाना, मतदान की प्रोसेस को नए सिरे से प्रस्थापित करना, अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में हो, एशिया के बहुत सारे देशों में हो, भारत का चुनाव आयोग एक रोल मॉडल माना जाता है
जी।
तो बहुत सारे देशों से ऑब्जर्वर्स इसमें आते हैं, तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण जो गहन तरीके से हुआ है, जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान में जो अपेक्षित है कि भारत का मतदाता ही मतदाता सूची में हो, उसके पारिवारिक जो क्रेडेंशियल्स है उनका एक बार फिर से ठीक से जांच की जाए। हर लगभग पहले तो 10 साल में ये होती थी, कभी कभी कम समय में भी हुई है, कभी 20 साल में भी हुई है, लेकिन अभी 2002-03 के बाद ये पहली बार ये प्रक्रिया हुई है, और इसने मतदाताओं का इस पूरी मतदान प्रक्रिया पर, भले इसमें राजनीतिक चर्चाएं या इवन मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर नकारात्मक चीजें फैलाने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत के मतदाता ने इस मतदान प्रक्रिया पर अपना पक्का विश्वास फिर से एक बार जताया है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं टर्नआउट के, वो स्पष्ट रूप से इसका संकेत दे रहे हैं
जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने मेरे प्रश्नों का बाखूबी जवाब दिया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में